بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج بھی ہم پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں گفتگو کریں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، پاکستان میں حکومت اور عدلیہ ایک بار پھر آمنے سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن حکومتی اراکین عدلیہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے تصادم کی تردید کرتے ہیں۔ آج نیب کی جانب سے عدالت میں ریکارڈ پیش نہ کیے جانے پر چیف جسٹس نے سخت برہمی کا اظہار کیا، لیکن بظاہر نیب کے چیئرمین نے ان کی برہمی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں طاہر القادری کے دھرنے کا آج آخری دن ہے۔ انہوں نے آج حکومت کو دی جانے والی ڈیڈ لائن بڑھا کر 3 بجے تک کر دی تھی۔ ادھر صورتحال سے نپٹنے کے لیے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا، جس میں علامہ طاہر القادری سے مذاکرات کا فیصلہ کیا گیا، اور اس مقصد کے لیے حکومت نے اہم سیاسی رہنماؤں پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی جو آخری اطلاع ملنے تک علامہ طاہر القادری کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھی۔ علامہ طاہر القادری کی تحریک کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ خود تحریک کے اراکین کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کر رہی ہے اور اس کے مطالبات پاکستانی عوام کے مطالبات ہیں، جبکہ ملک کی اکثر سیاسی جماعتیں ان کی تحریک کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ حکومت اور تحریک منہاج القرآن کے درمیان مذاکرات کا نتیجہ کیا رہا ہے، کیا حکومت نے اس تحریک کے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، کیا علامہ طاہر القادری کی آواز پوری پاکستانی قوم کی آواز اور ان کی تحریک پوری پاکستانی قوم کی تحریک ہے، ان کے مطالبات پر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا رد عمل کیا ہے، پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعتیں ان کی تحریک کے ساتھ کیوں نہیں ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اسلام آباد اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار فیصل حکیم صاحب کو۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے اس مباحثے میں شامل کیا جائے گا تحریک منہاج القرآن کے مرکزی رہنما مرتضیٰ پویا صاحب کو، اور اسی کے ساتھ پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار انصار عباسی صاحب کو بھی ٹیلی فون لائن کے ذریعے اس مذاکرے میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن پہلے ہماری یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔
پاکستان میں جاری سیاسی اور عدالتی کشمکش بدستور جاری ہے اور ہزاروں افراد اب بھی دارالحکومت کی سڑکوں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، جبکہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے قومی احتساب بیورو کی جانب سے رینٹل پاور کیس کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اسمبلیوں کی تحلیل، حکومت کی برطرفی اور انتخابی نظام کی تبدیلی کا مطالبہ کرنے والے طاہر القادری نے حکومت سے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دی جانے والی مہلت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ علامہ طاہر القادری نے حکومت کو آخری ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر صدر اپنے وفد کے ہمراہ مذاکرات کے لیے نہیں آئے تو وہ امن کا آخری موقع بھی گنوا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج دھرنے کا آخری دن ہے اور بقول ان کے وہ آج شام تک مارکا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے علامہ طاہر القادری سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی میں چودھری شجاعت حسین، ڈاکٹر فاروق ستار، خورشید شاہ اور افراسیاب خٹک شامل ہیں۔ تادم تحریر مذکورہ کمیٹی اور طاہر القادری کے درمیان مذاکرات کی کوئی خبریں موصول نہیں ہو سکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے، جنہوں نے شروع میں طاہر القادری کے ایجنڈے کی حمایت کی تھی، اب ان سے اپیل کی ہے کہ وہ دھرنا ختم کر دیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں دھرنا ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جیت ہو گئی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص بقول ان کے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اسلام آباد نہیں آیا، لہٰذا انہیں اپنا دھرنا اب ختم کر دینا چاہیے۔ دریاسنا حکمراں جماعت پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے، جس میں طاہر القادری کے دھرنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں ملک کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے احتساب بیورو کے سربراہ کی جانب سے رینٹل پاور کیس کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ یہ کیس احتساب بیورو کی عدالت میں موجود ہے، لیکن ہم اس کیس کی نگرانی کر سکتے ہیں، اور بینک آف پنجاب کے کیس اس کی مثالیں ہیں، جبکہ ہندوستان میں تہلکہ ڈاٹ کام کا کیس اس کی واضح مثال ہے۔ اس موقع پر چیئرمین نیب فصیح بخاری نے عدالت کو بتایا کہ ریکارڈ حساس ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس ہی اس کو جمع کرایا جائے گا۔ اس موقع پر پراسیکیوٹر جنرل نیب کے کے آغا نے عدالت کو بتایا کہ تمام ریکارڈ ڈی جی نیب راولپنڈی کے پاس موجود ہے۔ ڈی جی نیب کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ ریکارڈ رجسٹرار آفس پر جمع کرا دیا جائے۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی قیادت میں پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ رینٹل پاور کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس کیس میں نامزد کیے گئے ملزمان میں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا نام بھی شامل ہے، جو اس وقت پاکستان کے وزیر بجلی اور پانی تھے۔
جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ مذاکرات کے حوالے سے جو ہمیں آخری اطلاع ملی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد میں حکومتی ٹیم کے ساتھ منہاج التحریک منہاج القرآن کے قائد علامہ طاہر القادری کے مذاکرات جاری تھے۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں اس وقت پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار فیصل حکیم صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فیصل حکیم صاحب، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟
دیکھیں، جو آج سے کچھ دن پہلے تک کی صورتحال تھی، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جب یہ لانگ مارچ شروع ہوگا تو صورتحال یکدم تبدیل ہو جائے گی، اور شاید صورتحال اس طرف جائے گی جس طرح ماضی میں پاکستان میں جو صورتحال ہوتی رہی کہ جمہوریت کے کو ڈی ریل کیا گیا بار بار، اور وہ ایک تسلسل جو تھا وہ جمہوریت کا وہ نہیں چل سکا۔ لیکن یہ تمام جو خدشات تھے وہ یکدم اس وقت دم توڑ گئے جب یہ لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل بھی ہوا، اور اسلام آباد میں پرامن طور پر رہا۔ جو ڈاکٹر علامہ طاہر القادری تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسلام آباد میں جب داخل ہوں گے، لاہور سے اسلام آباد تک اور اسلام آباد میں جتنے دن بھی وہ رہیں گے، اس میں کوئی بھی تشدد کا عنصر نہیں ہوگا اور کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو 40, 42, or 50,000 کا یا جتنا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے، جو بھی مجمع تھا، اس میں کوئی بھی تشدد کا عنصر نظر نہیں آیا، مکمل طور پر پرامن رہا، اور گورنمنٹ نے بھی اس کو پورا موقع دیا اظہار رائے کی آزادی کا، اور اظہار رائے کی آزادی جو تھی انہوں نے وہ کی، اور اپنے مطالبات جو ہے وہ پیش کیے گورنمنٹ کے ساتھ، اب بھی وہ اس وقت موجود ہیں۔ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس سے آمریت کا رستہ ہموار ہو رہا ہے یا کوئی بیرونی ایجنڈا لے کے آئے ہیں، وہ اس طرح نہیں تھا۔ اس میں اصل صورتحال یہ تھی کہ اس وقت جو پاکستان کرائسس کا شکار ہے، اگر آپ عام آدمی کے مسائل دیکھیں، چاہے وہ انرجی کرائسس ہوں، چاہے مہنگائی ہو یا اس طرح کے، اس کی بنا پر جو یہ تحریک چلائی گئی تھی، یہ جو دھرنا دیا گیا تھا، دہشت گردی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ آپ دیکھ لیں مستون کا واقعہ ہو، یا جو علمدار روڈ پہ 104 شہدا کی لاشیں بعد میں رکھ کر مظاہرہ کیا جاتا رہا کہ وہاں کی حکومت کو ہٹایا جائے، تو اس طرح کے جو مسائل تھے اس نے اس دھرنے کی جو اہمیت تھی اس میں اضافہ کر دیا تھا، اور لوگ اس میں شریک ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ جو ان کے بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوشش کی جائے، اور ڈاکٹر طاہر القادری جو کہہ رہے تھے، انہوں نے بھی جو 23 دسمبر کو سپیچ کی تھی ان میں بھی یہی تھا کہ جو بنیادی سہولیات ہیں، یہاں پہ سی این جی کی سہولت ہے، یا الیکٹریسٹی ہے، یا انرجی کرائسز ہے، مہنگائی ہے، یہ اس حکومت کے پیدا کرتے ہیں، حکومت ان کے لیے اقدامات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 ہے، اور جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ کی جائیں۔ تو وہ جو کل کی سچویشن ڈیولپ ہوئی، اس میں جو خدشات تھے وہ یکدم دم توڑ گئے جب سیاسی جماعتوں نے کہا کہ وہ کسی غیر آئینی इकदाम की हमायत नहीं करेंगे। और डॉक्टर ताहिर अल कादरी का अपना खुद ये कहना था कि वो जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि ये निज़ाम चलता रहे ताकि इसमें जो इजहार राय की आज़ादी है वो आवाम तक मिलती रहे, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी बाहम पहुँचाई जाएँ, उनकी जो मुश्किल हैं उनके अजाले के लिए इकदाम किए जाएँ और वो लोग नुमाइंदगी के लिए आगे आएँ जो सही हकदार हैं नुमाइंदगी के, ना कि जो अब जो इल्ज़ामात लगे हैं जिस तरह इस असेंबली के दौरान 91 जो नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट के मेंबरान थे उनकी जारी डिग्रियां या इस हवाले से जो केसेस सामने आते रहे हैं, इस तरह के लोगों को नुमाइंदगी का हक नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने यकसर मुस्तरद किया था कि वो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, ना तो वो बैरूनी एजेंडा लेके आए हैं ना वो चाहते हैं कि ये सिस्टम डीरेल हो, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है इसमें बेहतरी की जाए। तो अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि हुकूमत ने भी इस नज़ाकत को समझा है और डॉक्टर ताहिर अल कादरी भी ये चाहते हैं कि सिस्टम जो है वो डीरेल ना, और बाकी सियासी जमातें भी यही चाहती हैं कि सिस्टम डीरेल ना हो, सिस्टम चलता रहे, कोई ऐसा गैर आइनी इकदाम ना हो जिससे जमहूरियत या इस मुल्क को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। तो मेरे ख्याल में ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये मुस्बत सिमत में जा रहे हैं और आइंदा 2 से 2.5 घंटों में इनका कोई मुस्बत जो है वो नतीजा भी निकल आएगा।
जी फैसल हकीम साहब, बहुत से लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर अल्लामा ताहिरुल कादरी ने हुकूमत के आखिरी अय्याम में इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की। भाई हुकूमत तो खुद ही जा रही है, 2-3 महीने के बाद इसका टर्म पूरा हो जाएगा, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो इन हालात में उनका लॉन्ग मार्च करना और धरना देना और असम्बली तहलील करने का मुतालबा, ये क्या माने रखता है।
देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं वो मुसलसल तनकीद करती रही हुकूमती पॉलिसियों पर, बहुत से पॉइंट्स पे वो इकट्ठी भी रहीं, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़ियातों या उसके साथ जो पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक्स हैं उस हवाले से जो पार्लियामेंट की करारदादें थी या इस तरह के दूसरे इकदाम जो थे उन पर अमल दरामद ना कराने पर या अमन अमान की सूरत हाल जो KPK और फाटा में दरपेश थी, बलोचिस्तान में दरपेश थी, जिस तरह के जो फ्रंट लाइन इत्तेहादी होने के बावजूद पाकिस्तान को मसाइल दरपेश थे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, उस पर जो है वो सियासी जमातों को भी तहफ़ुज़ात थे, वो वक्तन फवक्तन उस पर तनकीद भी करते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि इस हुकूमत को जो है वो अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए, अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, एक तो जमहूरियत का तसलसल होगा, दूसरा जो लोग हैं जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनमें शऊर आएगा, उनको अपने हकूक का पता चलेगा और जो सिस्टम बार बार डीरेल होने से पाकिस्तान को नुकसान होता रहा उससे बचा जाएगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का भी यही मौकफ है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी यही कहते हैं कि अगर वो 1 साल पहले अगर इस तरह का एहतजाज करते या 2 साल पहले करते या इस हकूमत के ख़त्म होने का वक्त अब करीब है, इससे कबल किसी वक्त ये एहतजाज किया जाता तो शायद ये सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती, शायद पाकिस्तान के अवाम ये समझते कि ये जो एजेंडा है ये इसलिए है कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जाए, जमहूरियत को डीरेल किया जाए या इस निज़ाम में कोई ऐसी तब्दीली लाई जाए जो बैरूनी एजेंडे की हो या ऐसी तब्दीली लाई जाए जिस तरह माजी में होता रहा कि कोई आमिर आके जो है वो फिलफोर इस जमहूरियत को ख़त्म कर दे। वो उनका ये मौकफ है कि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि जमहूरियत जो है वो ख़त्म हो, जमहूरियत डीरेल हो, इसीलिए उन्होंने इस वक्त का इंतखाब किया है। इस वक्त के इंतखाब का मतलब ये है कि अब जबकि एक नए प्रोसेस की तरफ, नए इंतखाबात की तरफ जो है वो पाकिस्तान जा रहा है, तो उससे कबल जिन पॉइंट्स पर आयन के जिन पॉइंट्स पर माजी में नज़रअंदाज किया गया उन पॉइंट्स को जो है वो मंजरे आम पर लाया जाए और उन पॉइंट्स को बुनियाद बनाया जाए। आयन का आर्टिकल 62 है, आयन का आर्टिकल 63 है, उसके बाद अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1976 है, इन पर अमल दरामद बनाया जाए और ऐसी क़यादत सामने लाई जाए चाहे वो किसी सियासी पार्टी से हो। उनका ये कहना है कि वो किसी भी सियासी पार्टी की हमायत नहीं करते, ना वो खुद किसी चीज़ के उम्मीदवार हैं, कोई भी नुमाइंदा है लेकिन ऐसा नुमाइंदा है जो अवाम का सही हकदार हो, और अगर वो ये पहले एहतजाज करते तो शायद उसका तासुर ये जाता कि वो किसी तरह मुल्क के निज़ाम को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनका ये मकसद नहीं है। तो आम जो लोग जो उस धरने में शरीक हैं उनका भी ये कहना है कि उन्होंने 5 साल तो पूरा वक्त दिया, अब 2 माह रह गए हैं तकरीबन इस टेन्योर को पूरा होने में गवर्नमेंट के, तो 2 माह के दौरान अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो माजी में गलतियां की गई हैं कम से कम नए इंतखाबी अमल में वो गलतियां ना हो, नए इंतखाबी अमल शफाफ हो और उसमें जो आयन का आर्टिकल 62 और 63 है और के साथ साथ अवामी नुमाइंदगी एक्ट जो है 1976 उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और उसके साथ साथ जो इंतखाबी उजरदारी है उसके लिए जो वक्त है और इलेक्शन कमीशन जो है वो जो कागजात नामजदगी है उनकी जाँच पड़ताल के लिए वक्त ज़्यादा रखा जाए, और इलेक्टोरल असलाहत जो हैं उसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसमें भी जो सियासी जमातों की नामजदगियाँ हैं वो ख़त्म की जाएँ, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन पर तो उनका एतमाद है, और उस जो बाकी चारों मेंबरान हैं उनको फिर फौर तब्दील किया जाए, तो उससे सूरत हाल जो है वो तब्दील होगी और पाकिस्तान में एक बेहतर जमहूरियत आ सकती है। और वो ये चाहते हैं, उनका ये मौकफ है, और जो धरने में शरीक हैं लोग वो भी ये चाहते, उनका भी ये मौकफ है कि कम से कम ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो, जो अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो दहशतगर्दी है जिससे पाकिस्तान दोचार है, उससे कम से कम निमटने की सलाहियत रखती हो।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और नाजरीन, टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबिता इस वक्त बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार, ISI के साबिक सरबरा जनरल हमीद गुल साहब से, जो पाकिस्तान की सियासत पे बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। हमीद गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जनाब, ये तहरीक मिनहाजुल कुरान के बारे में आज गुफ्तगू हो रही है, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान जो एक तसादुम की कैफियत है उस पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले तो हम खुद अल्लामा ताहिरुल कादरी की तहरीक के बारे में आपका नज़रिया जानना चाहते हैं कि ये तहरीक आपके ख्याल में किन अहदाफ के तहत शुरू की गई थी, और अपने अहदाफ में किस हद तक ये कामयाब रही है।
देखिए, ये तकरीबन 32 साल हो गए इसको लॉन्च किए हुए, और ये तो तबलीगी तहरीक को जो दावत का काम करते थे, और इन्होंने बहुत से इदारे बनाए, इन्होंने यूनिवर्सिटी बना ली, बाद में स्टेटस उसको दे दिया, तो इन्होंने बहुत काम किए इसमें कोई शुबा नहीं कि तालीम के मैदान में, और सिर्फ यही पाकिस्तान में नहीं बल्कि गैर ममालिक के अंदर भी, खास तौर पर यूरोप के अंदर भी इनके इदारे कायम है, कैनेडा में है और अमेरिका में भी गालिबन है। तो ये काम तो इन्होंने बहुत किया है, और बहुत से लोग इनके लेक्चर्स की वजह से मुतासर हुए, फिर इन्होंने दौरे करने शुरू किए, भारत के बहुत दौरे किए, और उसमें बहुत इनको पजीराई हुई। लेकिन एक मकाम पे जबकि आके बॉम्बे में इन्होंने लेक्चर दिया, और वहाँ नरेंद्र मोदी जो कि मुसलमानों का कातिल था उसकी तारीफ जगह की, तो उसके बाद कुछ मुसलमान जो थे वहाँ के वो इनसे नाराज भी हुए, खफा भी हुए। बहरहाल बात यह है कि इनका एक वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस मौजूद है। अब पहले ये सियासत में आए थे परवेज मुशर्रफ की, जिस वक्त उसने रेफरेंडम करवाया तो इन्होंने परवेज मुशर्रफ का साथ दिया। फिर जब अमेरिका ने जहाँ पे हमला करने की सोची, परवेज मुशर्रफ बहुत उसमें उसने साथ दिया अमेरिका का, तो इन्होंने उसको सुलह हुदैबिया कहा, और कहा कि ये ठीक है, यानी उसके हक में फतवा जारी कर दिया जो परवेज मुशर्रफ ने कहा था। तो उसके ऊपर भी जो जहादी तबके थे वो जरा जुजबुज हुए, और बिल आखिर ये उनकी जो एक PSO के तहत उनको अथॉरिटी मिली, और उन्होंने इलेक्शन करवाया 2002 में, तो उसमें ये इलेक्ट हो गए, और फिर बाद में फ्रस्ट्रेट हो गया बहुत ज्यादा, और उन्होंने उसको छोड़ दिया, हुकूमत वो पार्लियामेंट को रिजाइन कर दिया। तो ये तो एक मुख्तसर सी उनकी बैकग्राउंड है। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत मुसन्निफ हैं बहुत सी किताबों के, और अब ये पहली दफा उन्होंने एक बहुत ही ऐसे वक्त के ऊपर, जबकि कौम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इनकी लोगों की करप्शन और इस वजह से, और उनको नजर आ रहा था कि आइंदा की आने वाली हुकूमत भी गालिबन ऐसी ही होगी जैसे कि जरदारी साहब की NRO ज्यादा हुकूमत थी, जमहूरियत जो NRO के तहत आई थी, और ये बरतानिया और अमेरिका ने उसको ला बिठाया था हमारे सर के ऊपर, तो उसको उसने वही पॉलिसी जारी रखी थी, यानी प्रो अमेरिका और प्रो वेस्ट और मुसलमानों के खिलाफ जो पॉलिसीज आम तौर पे समझी जाती हैं, और आम सोच जो है मुसलमानों की पाकिस्तान में उसके बरखिलाफ है। तो इन्होंने खैर उसको अभी ये तसलसल जो है उसको तोड़ने की कोशिश की है, और ये निकले हैं मैदान के अंदर। लेकिन जो मैं हूँ, मैं तो एक इनकलाबी सोच रखता हूँ, और मैं हमेशा पाकिस्तान को एक नरम इनकलाब की तरफ माइल करने की कोशिश करता रहा हूँ अपने आर्टिकल के जरिए से, अपने लेक्चर के जरिए से। और नरम इनकलाब से मेरी ये मुराद है कि जब पाकिस्तान बना था तो वो उसने अपने लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ अहदाफ तय किए थे, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद, और वो उस वक्त माइनॉरिटीज जो थी उन्होंने भी मिलके उसमें हिंदू भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें पारसी भी थे और मुसलमान भी थे जाहिर है। तो उन्होंने उनके ओरिजिनल विजन के मुताबिक कहा था कि पाकिस्तान में अल्लाह की हुक्मरानी होगी और कुरान और सुन्नत की बालादस्ती होगी, यानी अल्लाह का हुक्म जो है वो कुरान के अंदर मौजूद है और उसकी अमली शक्ल जो है रियासत मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर दी थी, और आइंदा से उसमें लिखा गया कि जो भी कानून बनेगा वो उसकी रोशनी में बनेगा। तो कादरी साहब क्योंकि माशाल्लाह इनके जितने भी जलसे वगैरह होते रहते थे मुझे बुलाया करते थे, मैं वहां जाता था, दो नारे लगा करते थे, निजामे मुस्तफा का
जी
और दूसरा ये कि अल जिहाद, दो नारे लड़कियां भी और लड़के भी वो यही नारे लगाते थे, उसके ऊपर इनकी तरबियत हुई हुई थी। लेकिन मैं कदरे हैरत सजा हुआ कि जब इन्होंने मीनारे पाकिस्तान में 23 दिसंबर को जलसा किया आके, जिसका बड़ा चर्चा था, बहुत पब्लिसिटी हुई उसकी, बहुत पैसा खर्च किया गया, तो इन्होंने आर्टिकल 2A को छोड़ के आर्टिकल 3 से पढ़ना शुरू किया आइन को। आइन के ऊपर इनका बड़ा अबूर है क्योंकि प्रोफेसर ऑफ लॉ भी रहे हैं, इसलिए ये इनके इसलिए एस्केप तो नहीं कर सकता। किस वजह से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कि मेरी नजर में एक अधूरा इनकलाब है उसको पूरा इनकलाब होने तक हमें जाहिर है कि कुछ अरसा कुछ वक्त फासला तय करना है। तो पाकिस्तान के अंदर अब जबकि इनकलाबी कैफियत पैदा होने को है, मेरा ख्याल है अमेरिका के जाने के बाद यहाँ एक खला होगा और उस खला के नतीजे में यहाँ पे बिल आखिर इस्लामी निजाम को आना है। तो इन्होंने इस्लामी निजाम नहीं बल्कि मगरबी जमहूरियत के जो पैराए हैं उसके अंदर ही इस्लाह करने की कोशिश की है। ये अच्छी बात है अगर ये ऐसी इस्लाह हो जाए जिसको आर्टिकल 262 63 कहते हैं कि वो उनकी क्वालिफिकेशन या उनकी डिसक्वालिफिकेशन जो मेम्बरान है नुमाइंदे हमारे हैं इलेक्टेड नुमाइंदे उनकी क्वालिफिकेशन तय करता है तो जाहिर है कि वो तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन फिलहाल ये मैं समझता हूँ कि ये वो जो पूरा इनकलाब जिसका एक मौका मिल रहा है, तारीख हमें मौका देने को है और हम अपने आइन की रोशनी में उसको ला सकते हैं, उससे ये हटे हुए नजर आते हैं, हम उसकी तरफ नहीं अभी तक आए। तो मेरा भी बहुत जी चाहता है, मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं कि मैं इनके साथ शामिल हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे अहदाफ जरा मुख्तलिफ हैं, मैं पूरा इनकलाब चाहता हूँ, उसमें इफ एंड बट नहीं। हमें मगरबी जमहूरियत नाकाम हो गई है यहाँ पे, खुद मगरब में नया नाकाम हो गई है, तो हमें मगरबी जमहूरियत नहीं चाहिए। हमें जब हमने कबूल कर रखा है कि अल्लाह की हाकमियत है तो अल्लाह का हुक्म जो है वो कुरान के अंदर दिया हुआ है, अगर उसको फॉलो करेंगे वही सारे निजाम लेंगे, तो अब दुनिया मुंतजर है एक नए निजाम की। तो हमें एकदम एक इस ऐसी पोजिशन में निकल आएंगे जहाँ पे इंसानियत के लिए हम एक खिदमत कर सकेंगे, एक मुतबादल निजाम उसको दे सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ, आपको मैंने ब्रीफली बता दिया जो मेरे अपने ख्याल हैं। वैसे जो कह रहे हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं बड़े ही मुस्तकिल मिजाज हैं और इनको इसका क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों को वहाँ कायम रखा हुआ है, औरतें आई हुई हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ और हंसी खुशी बिल्कुल किसी के कोई मलाल नहीं है, कोई नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत फोकस्ड है और वो, लेकिन जब भी किसी से पूछते हैं टीवी के ऊपर तो वो कहता है हमें तो इनकलाब चाहिए। तो ये तो फिर इनकलाब से ही ये इस्लाह है, इस्लाह और इनकलाब में एक फर्क होता है। तो ये अब देखते हैं किस तरफ ये बात जाती है, हो सकता है कल को वो निजाम मुस्तफा की बात दोबारा आ जाए, लेकिन फिलहाल तो वो ये इसी पैराए में काम कर रहे हैं
जी। अच्छा अमित गुल साहब, पाकिस्तान की जो काबिले जिक्र जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने इस तहरीक से अपने आप को दूर रखा है, हत्ता जमात इस्लामी ने माजरत कर ली, इमरान खान साहब ने भी इनकी हिमायत तो की लेकिन इनकी तहरीक में शामिल होने से उन्होंने भी गुरेज किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जिसने शुरू में हिमायत की थी उसने भी इस तहरीक से, उनके जो मौजूदा तहरीक है उससे अपने आप को अलग रखा है, इसकी क्या वजह है?
बेशतर इनके अंदर तो एक तो वजह बड़ी सी यह है कि इनमें से जितने भी मेंबरान आएंगे वो आर्टिकल 62 63 की जो शरायत है कि अच्छा मुसलमान हो, वो दयानतदार हो, वो खाइन ना हो, वो अमानतदार हो, उसके खिलाफ उसने टैक्स पे किए हो, उसने कोई जुर्म ना किया हो, ये वो एक शरायत है जिनके ऊपर इनकी पार्टियों के कोई आदमी भी पूरे नहीं उतर सकते। हो सकता है जमात इस्लामी एक वाहिद पार्टी है जिसके मेरा ख्याल है कि लोग जो है वो बड़ी हद तक इसमें इस मायार पे पूरा उतरे आर्टिकल 62 63 के, लेकिन बाकी लोग जो है तो पूरा नहीं उतर सकेंगे उसमें। ये भी ये लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के बारे में उनका नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ अल्लाह के फजल से हमारे ऐसे वजीर हैं जो कि हमारी सूरह अखलास भी वो तलावत नहीं कर सकते, उनको कहा गया तो उन्होंने पता नहीं क्या किया। ऐसे वजीर भी रहे हैं जिन्होंने कहा कि जो कुरान के अंदर 40 पारे होते हैं। तो ये लोग जो है इसलिए खायफ हैं कि अगर ये सारी उसकी शरायत कबूल कर ली तो फिर तो पूरा सफाया ही हो जाएगा
जी। अच्छा अहमद गुल साहब, एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे, इसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे, इसलिए कि हमें बताया गया है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, आपके पास वक्त कम है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस फैसले से इस तहरीक की को तकवीत मिली है या नहीं?
जी तकवीत तो जाहिर है बहुत ज्यादा, उन्होंने तो उस वक्त जिस वक्त वो फैसला आया
जी
तो वहाँ खुशियां मनाई गई और उन्होंने ताहिल कादरी साहब ने खिताब के दौरान जब उनको सुनाया गया तो उन्होंने कहा कि आज का खिताब मेरा यहीं पे खत्म, आधा मिशन हमारा मुकम्मल हो गया, बाकी आधा जो है मैं कल दोबारा बताऊंगा तो वो भी हो जाएगा।
दोनों में कोई रब्त आपको नजर आता है इनके फैसले?
रब्त तो नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत कर दी है और मेरा ख्याल है कि उसमें शक नहीं है कि वो राजा परवेज अशरफ के बारे में उन्होंने नाम लेके नहीं कहा। वो एक केस था बहुत पुराना, 10 महीने पुराना था, जो उन्होंने नैब को भेजा हुआ था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, तो उसमें तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कहा कि ये जो 16 आदमी है जिसमें राजा साहब जो थे उस वक्त ये वजीर थे बिजली और पानी के, तो उस वक्त इन्होंने जो ये पावर प्लांट्स लिए थे और उनको एडवांस पे करके बहुत सारा पैसा इसका पाकिस्तान में जाया हो गया था, तो उस सिलसिले में 16 आदमियों की गिरफ्तारी का उन्होंने कहा। आज नैब के जो सरबराह हैं वो रिटायर्ड एडमिरल है, नेवी के चीफ भी रह चुके हैं, और उन्होंने कहा जी तो मैंने तो तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं की तो मैं आपके पास रेफरेंस कैसे भिजवाऊं। तो अब एक और उनको 23 तारीख तक मोहलत दी गई है। तो फिलहाल मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ये इरादा नहीं है कि उनको खटकड़ियां पहना के खड़े कर दें, लेकिन वो इसरार कर रहे हैं कि जिच हो गए हैं कि कोई फैसला भी हमारा होता है कोई इदारा उसको कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होता। गुज़श्ता 4 साल से बेशुमार ऐसे केसेस लटके हुए हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए, लेकिन जो एग्जेक्टिव है या गवर्नमेंट है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती, दानिस्ता अमल दरामद नहीं करती।
बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, और नाजरीन टेलीफोन लाइन के जरिए ही हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के एक सीनियर तजिया निगार अंसार अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जनाब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपके इल्म में है कि मुज़ाकिरात हुकूमती टीम और अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के किस मरहले में?
देखिए अभी तो ज़ाहिर चल रहे हैं और थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि पहले पॉइंट पे ही हैं जो जो बेसिकली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिलेटेड हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चूंकि इतना मसला है, गंभीर है, और इसकी जो चूंकि माइन्यूट डिटेल्स काफ़ी हैं
जी,
तो मेरा ख्याल है कि अभी टाइम इसमें लगेगा एकदम से, विद इन अ फ्यू आवर्स टाइम पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि इसमें 4-5-6 घंटे और लग जाएं, शायद इससे भी ज्यादा लग जाएं, तो इस पे टाइम लगेगा
जी। धरना तो आज खत्म हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि अल्लामा
धरना तो उन्होंने कहा है कि उस वक्त खत्म होगा जब मुज़ाकरात खत्म होंगे, जब अनाउंसमेंट होगी। वो तो मेरा ख्याल है कादरी साहब ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि धरना आप बैठे रहें जब तक के सब कुछ फाइनल नहीं होता
जी। तो खुद अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब ने जो लोगों को मुबारकबाद दी है और ये कहा है कि आप कामयाब हो गए, आप क्या समझते हैं कि उनकी टीम कितना कामयाब आपकी नज़र में?
देखें देखें एक तो ज़ाहिर है कामयाबी तो उस वक्त होगी कि अगर उनके जो मुतालबात थे उनमें से कुछ मुतालबात माने जाएं, और अगर उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं था जैसे कि हम अप्रिहेंड कर रहे थे, तो जो अपेरेंट एजेंडा है उसमें अगर फर्ज करें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो जाए और ये इंश्योर हो जाए कि जिस किस्म के रिफॉर्म्स की वो बात कर रहे हैं कि जी जिस तरह जाली डिग्री वाले टैक्स चोर और टैक्स लॉ के वायलेटर्स, इस तरह के लोग अगर असम्बलियों में दोबारा री इलेक्ट ना हो, तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी बड़ी कामयाबी होगी उनके लिए, और वो उसको काफ़ी जुबरीट कर सकते हैं कि देखें हमने कम अज़ कम इतनी बड़ी बात मनवा दी है, तो मेरा है ना उनके लिए ये बात काफी अहम है।
जी अब्बासी साहब लाइन पर रहिएगा। फैसल हकीम साहब, जनाब मुल्क की तमाम अहम सियासी जमातों ने अल्लामा ताहिरुल कादरी की जो मौजूदा तहरीक है उससे अपने आप को दूर रखा है, मुस्लिम लीग, नून जमात इस्लामी और हत्ता तहरीक इंसाफ ने भी इनकी हिमायत का ऐलान तो किया था लेकिन तहरीक में शमूलियत अख्तियार नहीं की, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी, चाहे वो एमकेएम थी चाहे वो तहरीक इंसाफ थी, ये दो ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने इखलाकी तौर पर कहा कि वो इनके साथ होंगे। पहले एमकेएम ने ऐलान किया कि वो इनके साथ धरने में शरीक भी होगी लेकिन बाद में उन्होंने इससे माजरत कर ली। जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी अपोजिशन की, उनका जो कल इजलास हुआ है उन्होंने बिल्कुल इससे लातालुकी का इजहार किया और उनका ये कहना था कि वो जमहूरियत के खिलाफ कोई भी ऐसा इकदाम होने के खिलाफ इकट्ठे होंगे जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचता हो। जो ये खदशा था कि शायद ताहिरुल कादरी की सूरत में जो ये मार्च आ रहा है या जो ये धरना दिया जा रहा है वो मुल्क को उस तरफ लेके जाएगा दोबारा एक नई अमरीत की तरफ, वो इससे दम तोड़ गया। लेकिन जो ताहिरुल कादरी की अपनी जो फॉलोइंग है पाकिस्तान में, जाहिर है उनका एक बहुत बड़ा इदारा है, इदारा में नाजुल कुरान, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं जो इस वक्त जो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस थे इस गवर्नमेंट से। तो उसकी वजह से ताहिरुल कादरी को, जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं उनको काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है और वो गुज़िश्ता 5 दिनों से काफ़ी मुस्तकिल मिजाज लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो हुकूमत है उन्होंने उसने भी कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे तशद्दुद का अंसर जाता और वो दूसरा जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी कोई ऐसा इकदाम नहीं किया। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा है कि इतना बड़ा मजमा था 40-50 या जितना भी दावा किया जा रहा था और वो जब इस्लामाबाद में दाखिल हुआ और गुज़िश्ता 5 दिनों से इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद में कोई पुरतशद्दुद वाकया नहीं हुआ है, कोई ऐसी तोड़फोड़ नहीं हुई है जो इतने बड़े मजमे की सूरत में जो हुकूमत मुखालिफ निकला हो उसकी वजह से होती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इससे दूर ज़रूर इसलिए हैं कि जो उनके ख्याल में जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो एक एजेंडा उनका अपना है, वो जो इस्लाहात चाहते हैं उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये ख्याल है कि वो पहले से आयन के मुताबिक हैं और जो भी इंतखाबात होते हैं वो आयन के मुताबिक किए जा रहे हैं। और जो उनका ये कहना है कि दो पार्टीज़ के की वजह से निगरान हुकूमत जो हस्ब इक्तदार होगी और हस्ब इख्तलाफ उनके जो पार्टीज़ हैं उनकी मशावरत से होगी, ये अक्सर उनका कहना है कि गलत है क्योंकि जो कायदे हिजब इख्तलाफ होगा वो जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन की चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं या पार्लियामेंट से बाहर हैं उन सब को एतमाद मिलेगा और उसके बाद ही निगरान सेटअप बनेगा। तो इसलिए वो ज़रूरत नहीं समझते कि ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसा स्टेप लिया जाए कि जिससे किसी किस्म का जो जमहूरी निज़ाम चल रहा है उसको नुकसान पहुंचने का खतरा हो, इसलिए जो जमहूरी कुव्वतें थी उन्होंने इसको अपने आप इस धरने से दूर रखा।
जी अब्बासी साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में?
नहीं,
अब्बासी साहब से राबता मुनक़ता हो चुका है। फैसल हकीम साहब, जनाब आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग, नून और दीगर बड़ी सियासी जमातों की शमूलियत के बगैर कोई भी सियासी तहरीक पाकिस्तान में कामयाब हो सकती है?
मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, एएनपी हो, एमकेएम हो, मुस्लिम लीग काफ हो या कोई भी सियासी पार्टी हो, उसकी अपनी जो पॉलिटिकल फोर्स है वो उसका जो मैंडेट है उसको आप किसी सूरत भी रद्द नहीं कर सकते। आप जो छोटी मजहबी जमातें चाहे आप ले लें उनके भी अपने पॉकेट्स हैं, आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की हमायत हासिल नहीं है, उसके बावजूद जो एक तहरीक में नाजुल कुरान इदारा है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी उसके सरबराह हैं और उन्होंने इतना कामयाब लॉन्ग मार्च किया जिसमें कोई जो है ना तो पथराव या कोई इस तरह से तशद्दुद का आंसर था। और हुकूमत को भी ये क्रेडिट इतना ज़रूर जाता है कि उन्होंने भी किसी तरह भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और गुज़िश्ता 5 रोज़ से जो इस्लामाबाद है के बिल्कुल रेड जोन के करीब ये जो एहतजाज कर रहे हैं और धरना दे के बैठे हुए हैं, तो उन्होंने सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश की है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहला हुआ है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल फोर्स इसमें मौजूद नहीं है, चाहे वो PTI है जिसने इखलाकी तौर पर हमायत का ऐलान ज़रूर किया, या MQM है, जो छोटी छोटी पॉलिटिकल आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग होगी उसके अहमद रज़ा कसूरी इसमें मौजूद थे, या इस तरह की छोटी जो पार्टीज थी उनके चंद नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन बड़ी सियासी पार्टी ना होने के बावजूद भी इतना कामयाब धरना, इसका क्रेडिट मेरे ख्याल में जितना डॉक्टर ताहिरुल कादरी को जाता है, और उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करना जो सेटअप है मौजूदा सेटअप उसको भी उतना ही क्रेडिट जाता है। हालांकि जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहा था उसमें भी आज जो वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ हैं उन्होंने ये अदाया जारी की थी कि जो भी तिबी सहूलियात है, क्योंकि इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और उसमें जो है वो लोग बीमार हो रहे थे और पोली क्लिनिक और पेम या दूसरे हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि तिबी सहूलियात में कोई कसर रवाना रखी जाए और जितनी भी सहूलियात हैं उनको फराहम की जाए। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि बड़ी सियासी जमातें ना होने के बाद भी इतना कामयाब धरना दिया गया है। जी
जी अम्बासी साहब से राबता हमारा शायद बरकरार हो गया। अम्बासी साहब क्या आप लाइन पर हैं जनाब?
जी जी लाइन पर।
जी अम्बासी साहब, ये रेंटल पावर केस के ताल्लुक से क्या पेशरफ्त है?
देखिए उसमें आज तो जाहिर है उसमें आज हियरिंग दोबारा हुई है और नैब के चेयरमैन ने टाइम मांगा है, लेकिन आपको ये पता है कि जो उस दिन जो फैसला हुआ था और जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि तमाम लोगों को इंक्लूडिंग राजा परवेज अशरफ साहब को इनको अरेस्ट करें, तो बेसिकली वो 80 पेज की रिपोर्ट पेश की थी नैब के DG नैब पिंडी ने, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और जो उन्होंने लिख के भेजा चेयरमैन को कि ये हमारी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है और इसको रेफरेंस बना दें और आप फाइल कर दें कोर्ट में, उसमें ये लिखा हुआ था कि राजा परवेज अशरफ और दूसरे लोग, एक केस में 16 लोग और दूसरे केस में 22 लोग, कि इन तमाम लोगों के अगेंस्ट प्रोसीड किया जाए और कोर्ट में जाया जाए और जाहिर है उसी के लिहाज से उनको अरेस्ट भी किया जाए। चूंकि आपको पता है कि चेयरमैन नैब तो अपॉइंटेड हैं, इस गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, नैब कितनी इंडिपेंडेंट है ये भी आपको सबको पता है, और ये भी हमें पता है कि नैब चेयरमैन को अपॉइंटमेंट से पहले ही इस्तीफा इनसे ले लिया गया था, लिखा हुआ इस्तीफा गवर्नमेंट के पास है, सो इनके तो हाथ ही बंधे हुए हैं, इन्होंने तो वही कुछ करना है जो गवर्नमेंट इनको कहेगी, सो उस लिहाज से डिले डेलिंग टैक्टिक चलेंगी, जैसे पहले भी आप देख रहे हैं कि बहुत से केसेस में यही कुछ हो रहा है। तो आपको और हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि नैब के चेयरमैन तो कुछ भी नहीं करेंगे और उनको तो कोई भी करप्शन का केस इस गवर्नमेंट से रिलेटेड नजर ही नहीं आ रहा, या अगर कोई इन्होंने करप्शन का केस पकड़ा हो तो बताएं हमें कि कौन सा करप्शन का केस पकड़ा, कौन सा इन्वेस्टिगेट किया, किस शख्स को प्रोसिक्यूट करवाया, किस शख्स को कन्विक्शन करवाई। सो ये तो करप्शन को छुपाने के लिए, करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में कहा भी है, इनको कहा है कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करते हुए कि आप तो करप्ट और करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं।
जी बासी साहब, क्या मौजूदा जो केस के हवाले से ये कहा जा सकता है कि हुकूमत और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने है और हुकूमत और अदलिया में तसादुम की कैफियत है?
देखिए ये हमेशा, ये तो पिछले हम दो तीन जब से NRO का फैसला आया यही सुनते आ रहे हैं। एक्चुअली बात मसला ये है कि हुकूमत अगर करप्शन करेगी, मिस रूल करेगी, और उसके ऊपर अगर कोर्ट जब इंटरवीन करेगी, तो जब भी इंटरवीन करते हैं तो ये कहते हैं कि देखें कन्फ्रंटेशन हो गई, देखें हमारे मामलात में इंटरफेरेंस हो गई। अब कोर्ट का तो काम यही है भाई, हुकूमतों को तो काम नहीं होता कि आप करप्शन करें, हुकूमतों का तो काम होता है कि करप्शन को रोकने के लिए इकदाम करें, हुकूमत का तो काम ये होता है कि आप अकाउंटेबिलिटी करें, जो चोर उचक्के हैं लुटेरे हैं उनको पकड़ें, उनको प्रोटेक्ट करना आपका काम नहीं होता। जब हुकूमत चोरों के साथ मिल जाएगी, जब हुकूमत लूटर्स के साथ मिल जाएगी, जब हुकूमत करप्ट लोगों के साथ मिल जाएगी, तो आप मुझे बताएं कि फिर उसका क्या, उसका फिर उसके नतीजे में डेफिनेटली फिर कोर्ट क्या खामोश हो जाए? अगर कोर्ट इंटरवीन करती है तो उसके ऊपर फिर इस तरह का अगर रिएक्शन आए तो फिर तो बड़ी अजीब सी बात है, और फिर कहते हैं ये फिर प्रोपेगेंडा की जी, ये तो कन्फ्रंटेशन हो गई, ये तो डेमोक्रेसी को खतरा हो गया, और ये पता नहीं इस तरह की बातें। सो देखें ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, ये बेसिकली जब भी सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने इस किस्म का कोई भी फैसला किया तो हमेशा उसको उसका मुकाबला किया गया पॉलिटिक्स के साथ, सियासत खेली गई सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो अभी भी आपको बताइए ये सियासत खेली जा रही है।
जी शुक्रिया जनाब। अब्बासी साहब लाइन पे रहिएगा। फैसल हकीम साहब, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं?
देखें, सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता 5 साल से जो है वो बिल्कुल जो है वो आज़ाद अदलिया जो है पाकिस्तान में काम कर रही है, और उसने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए हैं जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे। अभी जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ़ रज़ा गिलानी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो इस कलमदान से महरूम हुए। तो सुप्रीम कोर्ट की अभी जो सूरत हाल है उससे भी जो है फिल वक्त ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो फौरी तौर पर कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिससे गवर्नमेंट किसी मुश्किल से दो चार हो, और अभी थोड़ा सा वक्त भी गवर्नमेंट को दे दिया गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी जो कल जो रिमार्क से चीफ जस्टिस से उनका ये कहना था कि जो भी कुछ हो, चाहे आसमान गिरे या चाहे कोई आफत आए, जो भी फैसला होगा वो कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक होगा। तो उससे लगता यही है कि जल्द या बदेर ऐसा फैसला आएगा कि जिससे चाहे ये गवर्नमेंट तब्दील भी हो जाए, चाहे ये फैसला उसके बाद आए या गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में ये बिल्कुल एंड पे जाके फैसला आए, उससे ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है या इसके जो साबिक गवर्नमेंट हो जाएगी उसमें इसके लिए चंद मुश्किलात जरूर आएंगी। जी
जी अब्बासी साहब, आप लाइन पर हैं जना?
जी जी लाइन पर हूं
जी। अब्बासी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ताहिरुल कादरी की तहरीक, एक ही वक्त में दोनों बातों का सामने आना, ये इत्तेफाकिया है या दोनों में कोई रब्त है?
ये उस दिन जाहिर है हमारी तो पूरी कोशिश थी मीडिया की कि हम इसको कनेक्ट कर दें, और फिर इसी तरीके से जब हमने लोगों को फैक्ट्स तो बताए नहीं, हमने लोगों को प्रोपेगेंडा हमने कर दिया, हमने स्पेकुलेशन शुरू कर दी, तो लोगों ने भी यही समझा कि ये तो कोई कनेक्शन है। हालांकि मैंने आपको बताया कि उस दिन कादरी साहब ने जो भी फरमाया था तो उसके वो तो कोर्ट में उस दिन वैसे ही केस लगा था, और डीजी नैब रावलपिंडी खुद कोर्ट चल के आए थे, उन्होंने वो रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर इशू किया। सो देयर वाज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन बिटवीन द टू, और इसी वजह से आप देखेंगे दूसरे दिन कादरी साहब ने भी कहा कि ये बातें की गई, हालांकि हमें पता भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस है या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर किया है। और इसी तरीके से चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये बात इस तरह बात कही गई है जो कि इंतहाई गलत बात है। और फिर आप ये भी देखें, ये तो हमने कनेक्शन कर दिया, उसी दिन जब चीफ जस्टिस ने सुबह ये कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कोई क्या कह रहा है और कोई किस तरह, तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है हर हाल में टाइम के ऊपर होने चाहिए, कोई जो मर्जी करे, जो मुजाहरा पे मर्जी करे, टाइम के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। और उन्होंने एक इससे पहले भी स्नप किया कादरी साहब को, आपको याद होगा कोई एक दो हफ्ते पहले वो भी, और वो हेडलाइंस बनी तमाम न्यूज़ पेपर की कि एक अजनबी आके या कोई बाहर से आके इस मुल्क में एनार्की नहीं फैला सकता, हम किसी को एनार्की फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। तो मुझे नहीं समझ आई कि इसमें क्यों कनेक्शन लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन एनी हाउ लोग आजाद हैं, आपको अपने ख्यालात की आजादी है, आप जो मर्जी कर लें, तो ये तो फिर अब चलता है पाकिस्तान में, यही कुछ तो हो रहा है यहाँ पे।
जी शुक्रिया जनाब। फैसल हकीम साहब, जनाब क्या मौजूदा सूरत हाल को सियासी बहरान से ताबीर किया जा सकता है?
जी बिल्कुल, अब से तो 2 दिन कबल आप ये कह सकते थे कि पाकिस्तान में एक सियासी बहरान जो है वो जन्म ले रहा है। जिस वक्त जो ताहिरुल कादरी थे वो जो मुतालबात कर रहे थे उस पर हुकूमत भी खामोश थी और अपोजिशन की तरफ से भी कोई जो है वो फिर वक्त जवाब नहीं आया था। कल जिस तरह अपोजिशन की तरफ से एक ज़ोरदार जवाब आया और उसके साथ साथ जो इमरान खान जो पीटीआई के सरबराह हैं उन्होंने इस धरने से लातअल्लुकी का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि वो भी किसी गैर आइनी इकदाम की हमायत नहीं करेंगे, और ताहिरुल कादरी खुद उन्होंने ये कहा कि वो जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते, वो ये चाहते हैं कि मसाइल हल हों और जो अवामी मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, उसके साथ साथ जो हक की नुमाइंदगी है वो उन लोगों को मिलना चाहिए जो उसके अहल हों। तो उसके बाद जो हुकूमत की हिकमत अमली सामने आई कि तादी जमातों का इजलास हुआ और उसके बाद 10 रुकनी कमेटी ऐसी तश्कील दी गई जिसमें सीनियर रहनुमा हैं जो हुकूमती तादी पार्टीज़ हैं, और उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी अगर देखा जाए तो वो भी मौजूद है। चौधरी शुजात हुसैन बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान में काफ़ी इज्जत है सियासी हलकों में उनकी। उसके साथ साथ खुर्शीद शाह हैं, कमर जमान कायरा हैं, और फाटा से भी नुमाइंदगी दी गई अब्बास आफरीदी की सूरत में। तो ये जो हाई अप डेलीगेशन था वो अभी मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। तो कहा जा रहा है कि काफ़ी उम्मीद है, तवक्कुआत हैं कि जल्द या बदेर आज किसी वक्त जो है उसकी कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी। और ये जो सियासी बहरान के हवाले से या कोई नई सेटअप के हवाले से बातें की जा रही थी, उनका कोई ना कोई मुस्बत हाल निकल आएगा और फिलहाल जो सियासी बहरान के हवाले से खबरें थी वो भी खत्म हो जाएंगी। जी जी,
बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। जनाब, ये पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, क्या ये आपकी नज़र में किसी बड़ी तब्दीली, किसी इनकलाब या इनकलाबी इस्लाहात का पेश खैमा हो सकता है?
देखें, अल्लाह करे कि यहाँ पे कोई इंकलाबी इस्लाहात आ जाए, लेकिन अभी जिस तरह अभी बात हो रही थी ना कि देखें कल जो काजी साहब ने अपनी काजी साहब से मुतल्लिक उनकी अपनी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी एक तरफ, उसको आप छोड़ दें, लेकिन जो उन्होंने अपनी जो बातें की हैं उनमें अक्सर बातें बहुत जायज हैं और वो चीज़ें वो हैं जो कि मीडिया पिछले 4-5 साल से हाईलाइट करता रहा है। आप देखें उसके ऊपर रिएक्शन क्या आया, तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट चले हमेशा एका रहा, जो सरकार में गवर्नमेंट की जो 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हुकूमत कर रही हैं, पीएमएलएन है, सॉरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एनक्यूएम है, एएनपी है, इस तरह की जो पार्टीज हैं, ये तो
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। और इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफ़िज़।